कोई रोक नहीं कोई रोक नहीं कुछ जानकारी थोड़ी सी बोले जा
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्रेमा नेगी और कार्यक्रम है नई दिशा। लेकिन ये जगत कहाँ रह गया?
प्रेमा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
ओ जगत, ये तुम अक्सर कहाँ रह जाते हो? पता है मुझे तुमसे कितनी शिकायत है?
ओहो प्रेमा भाई, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे दिल में
जगत
मेरा मतलब तुम्हारे आस पास रहता हूँ भाई, लेकिन तुम हो कि मुझे पहचानती नहीं।
मैं आपको अच्छी तरह पहचानती हूँ जगत जी, आपकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं।
अरे बाप रे, तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम HIV पॉजिटिव लोगों को भी देखकर पहचान लेती हो?
ये क्या बेहुदा सवाल है जगत। कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नहीं ये कभी भी देखकर नहीं बताया जा सकता। इसके लिए खून की जांच जरूरी है। अब आगे से तुम भूलकर भी ऐसी बातें मत करना। यूँ इस तरह जानकर अनजान बनना बिल्कुल सही नहीं है।
यू आर राइट प्रेमा भाई, मेरे जैसे लोगों के लिए ही तो है हमारा अगला सेगमेंट जानो अनजाने। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं HIV पॉजिटिव लोगों के अधिकारों के बारे में।
मगर जगत, ये अधिकारों की बात आई कहाँ से? क्या HIV पॉजिटिव लोगों के कोई स्पेशल अधिकार होते हैं?
नहीं प्रेमा, सभी पॉजिटिव लोगों के भी वही अधिकार होते हैं जो एक आम आदमी के होते हैं, जैसे शिक्षा पाने का अधिकार, बीमार पड़ने पर चिकित्सा का अधिकार और काम या मजदूरी का अधिकार।
तो फिर?
मगर HIV पॉजिटिव लोगों के संदर्भ में इन सभी अधिकारों का उल्लंघन होता है। उनके बच्चों को आम स्कूलों से निकाल दिया जाता है, अस्पतालों में चिकित्सा नहीं दी जाती। तो जरूरी है कि इन अधिकारों के लिए हम HIV पॉजिटिव लोगों का साथ दें।
बिल्कुल जगत।
अच्छा प्रेमा, क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मैं अक्सर यहाँ देर से क्यों आता हूँ?
जगत, स्टूडियो के बाहर तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्यों देर से आते हो, अब इन सब बातों में भला मुझे या हमारे श्रोताओं को क्या दिलचस्पी हो सकती है? और वैसे भी तुम्हारे देर से आने की बोरिंग सी वजह मैं इस कार्यक्रम में सुनाकर हमारे श्रोताओं को और इंतजार नहीं करवा सकती। तो आइए दोस्तों, भेजा फ्राई में सबसे पहले आपको बताते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का जवाब। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था ART की दवाई किस परिस्थिति में दी जाती है,
और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन D, जब शरीर में CD4 काउंट 200 से कम हो जाता है।
और जगत, अब एपिसोड 16 के विजेता का नाम तो बता दो।
अरे हाँ दोस्तों, एपिसोड 16 के विजेता रहे हैं अमित जी सिकंदराबाद से।
आपको ये मस्त भेजा फ्राई कैप बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों, अगर आप भी ये भेजा फ्राई कैप जीतना चाहते हैं तो एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब देते रहिए। SMS के लिए हमारा नंबर है 9717678223, यानी कि 9717678223। और अब बारी है क्विज मास्टर जी की।
और आज का सवाल है, अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उसे देखकर आप इसका पता कैसे लगा सकते हैं? अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए। अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उसे देखकर आप इसका पता कैसे लगा सकते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए, उसका बर्ताव देखकर, बी, उसको थका हुआ और बीमार सा देखकर, सी, किसी को देखकर उसका HIV स्टेटस नहीं बता सकते हैं, और डी, HIV एक वर्ग के लोगों को ही होता है इसलिए वर्ग से ही पता चल सकता है। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए। ए, उसका बर्ताव देखकर, बी, उसको थका हुआ और बीमार सा देखकर, सी, किसी को देखकर उसका HIV स्टेटस नहीं बता सकते हैं, और डी, HIV एक वर्ग के लोगों को ही होता है इसलिए वर्ग से ही पता चल जाता है।
तो दोस्तों, फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND21 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ए बी सी या डी और लिखकर हमें भेज दीजिए 9717678223 पर। हमारा नंबर एक बार फिर नोट करें 9717678223। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का।
दोस्तों, आमने सामने में आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में और किशोर किशोरियों के बीच इस विषय पर जानकारी के बारे में। नमस्कार डॉक्टर नीता दबई, आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
डॉक्टर दबई। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि गर्भधारण को लेकर आम गलत फहमियाँ क्या होती हैं?
गर्भधारण को लेकर कई गलत फहमियाँ होती हैं कि जैसे कि किस करने से गर्भधारण हो सकता है, या एक दूसरे को छूने से हो सकता है, या पास बैठने से हो सकता है, तो ये सब नहीं है। गर्भधारण तभी होता है जब वीर्य का प्रवेश योनि में होता है। दूसरी बात ये कि गर्भ ना धारण करने का सुरक्षित समय कौन सा होता है, तो हमारे महावारी चक्र में कोई भी समय ऐसा नहीं होता है जो पूर्ण तरह से सुरक्षित होता है। महावारी के समय भी अगर यौन संबंध हो तो गर्भ धारण हो सकता है।
डॉक्टर दबई, कितनी उम्र में एक लड़की का गर्भ ठहर सकता है?
देखिए, आमतौर पे मेडिकली जो हम मानते हैं वो यह है कि महावारी चक्र जब एक लड़की की शुरू हो जाती है, जो आजकल 10 और 16 साल के बीच में है, तो उसके बाद कभी भी गर्भ ठहर सकता है।
और गर्भ धारण करने की सही उम्र क्या है?
गर्भ ठहरने की सही उम्र तो 20 साल ही होती है, क्योंकि उस उम्र में एक लड़की का शरीर गर्भ धारण के लिए तैयार होता है।
और कच्ची उम्र में गर्भावस्था के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं?
देखिए, छोटी उम्र में गर्भ ठहरने से कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो खून की कमी होती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, जिससे एक लड़की का शरीर कमज़ोर हो जाता है और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पे उसका असर पड़ता है। गर्भपात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी बहुत ज़रूरी बात यह है कि मानसिक रूप से एक लड़की इस समय पे प्रसव के लिए या गर्भ धारण के लिए नहीं तैयार होती है। उसे एक शिशु के पालन पोषण के लिए या गंभीरताओं को समझने के लिए उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कम उम्र में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, इससे बहुत बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं।
डॉक्टर दबई, आपने हमारे श्रोताओं को जो इतनी सारी जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद तो मुझे भी कहना चाहिए, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।
Gets himself a wife, but a daughter is a daughter all her life.
और दोस्तों, अब बारी है आपके सवालों की और हमारे जवाबों की,
यानी आपकी बात की। दोस्तों, आज का सवाल है मुंबई से जाह्नवी जैन शिंदे जी का, और वो पूछ रहे हैं कि एचआईवी एड्स की आधी अधूरी जानकारी से क्या नुकसान होता है। शिंदे जी, आधी अधूरी जानकारी तो एचआईवी एड्स के लिए हो या फिर किसी और विषय पर, वो नुकसानदायक ही होती है। लेकिन हाँ, एचआईवी एड्स के लिए अधूरी जानकारी रखना यानी अपने साथ साथ किसी और की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करना।
हाँ, और अगर हम एचआईवी की खास वजहों के बारे में ही आधी अधूरी जानकारी रखेंगे तो खुद को एचआईवी से नहीं बचा पाएंगे, और एचआईवी पॉजिटिव लोगों के प्रति डर और भेदभाव की भावना हमारे दिल में उत्पन्न होगी। दूसरी बात, यदि हमें एचआईवी की पूरी जानकारी होगी तो अगर कभी हम स्वयं एचआईवी पॉजिटिव हुए तो हमारे पांव तले जमीन नहीं खिसकेगी। हम इस वायरस से लड़ने की और इसके साथ जीने के तरीकों से परिचित होंगे। इसलिए दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से बचिए और पूरी और घनिष्ठ जानकारी पाने की कोशिश कीजिए।
दोस्तों, अगर आपके मन में भी एचआईवी के संबंध में कोई शंका या सवाल है तो आप हमें अपना सवाल खत या फिर ईमेल के जरिए बिना झिझक भेज सकते हैं।
चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम नई दिशा 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद 121003 हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYEEDISHAA@gmail.com।
आप अपना सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए हमारा नंबर नोट करें 9717678223, यानी कि 9717678223। और दोस्तों, अब आ चुका है वो समय जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है।
जी हाँ दोस्तों, आज के रेडियो धारावाहिक का। तो दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने रेडियो धारावाहिक की तरफ और सुनते हैं जीवन की राह की 21वीं कड़ी। पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, हॉस्पिटल से शीला को फोन आता है और डॉक्टर शीला को जल्दी मिलने के लिए कहती है, लेकिन राजन को उस वक्त शिक्षा केंद्र के उद्घाटन में जाना होता है, जिसकी वजह से वो शीला से अगले दिन चलने की बात कहता है।
उधर हॉस्टल में वार्डन का कत्ल हो जाता है। हवलदार ये बात विनोद और पिंटो को बताता है। मुंबई में सूरज जयपाल को शेखर से मिलवाने ले जाता है, जहां शेखर जिंदगी से निराश जयपाल को फिर से जीने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब सुनते हैं आगे।
जयपाल, सांस लो, थोड़ा और। और ये स्किन रैश, मेरा मतलब तुम्हें खुजली कहाँ कहाँ है?
ये तो यहाँ और यहाँ भी है।
शेखर, थोड़ी समस्या तो है।
जी डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं इन्हें आपके पास लाया हूँ।
जयपाल, कब से ऐसी हालत है तुम्हारी?
डॉक्टर, अब तो कई दिन हो गए, बुखार चढ़ता है लेकिन उतरने का नाम ही नहीं लेता है। और इसके अलावा खांसी जुकाम भी है, समझ में नहीं आता बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही।
देखो जयपाल, जैसा कि शेखर ने बताया कि तुम HIV पॉजिटिव हो, उसका सबसे पहला लक्षण ही यही है, जल्दी जल्दी बीमारियां लगती हैं और बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाती।
लेकिन क्यों डॉक्टर?
क्योंकि जब व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है तो शरीर में CD4 की संख्या कम होने लगती है।
CD4?
हाँ जयपाल, CD4 ये एक तरह का सेल होता है जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ता है, लेकिन HIV का वायरस इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो इस CD4 को खत्म करता जाता है और धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और फिर अगर हमें कोई बीमारी होती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती।
तो इसका मतलब मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा डॉक्टर साहब?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपना CD4 काउंट करवाना होगा।
जी।
तो तुम आज ही अपना CD4 काउंट करवा लो, बाकी का ट्रीटमेंट मैं रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू कर पाऊंगा।
ठीक है डॉक्टर साहब।
इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, आप हर हाल में कातिल को ढूंढ कर उसे सजा जरूर दिलवाइएगा।
प्रिंसिपल साहब, पुलिस अपना काम कर रही है, कातिल जो भी होगा बच नहीं पाएगा।
विनोद, मुझे तो मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है, ये पुलिस वाला तो एक एक की खबर ले रहा है।
हाँ यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
अरे डरता क्यों है, चल चलते हैं।
तुम दोनों अब तक कहाँ थे?
जी,
मैंने पूछा, सारे हॉस्टल के लड़के और स्टाफ यहाँ है, तुम दोनों कहाँ थे अभी तक?
जी, अपने कमरे में सो रहे थे।
सो रहे थे, नाम क्या है वैसे तुम्हारे?
जी, मेरा नाम पिंटो है और ये विनोद है।
पिंटो और विनोद, तुम्हें पता है अक्सर वही सुबह देर तक सोते हैं जो देर रात तक जागते हैं।
जी।
वार्डन के कत्ल के बारे में क्या जानते हो?
जी, अब हमें क्या पता, हम नहीं जानते कुछ।
ए, विनोद नाम बताया ना तुम्हारा?
जी हाँ।
तुम जानते हो वार्डन के कत्ल के बारे में?
जी जी नहीं, कुछ नहीं।
वैसे जब कुछ नहीं जानते तो तुम्हारी माथे से ये पसीना क्यों आ रहा है?
नहीं नहीं, वो क्या है ना, गर्मी बहुत है।
जनाब।
राधेश्याम, कहो।
जनाब, ये पर्स मिला है, इसमें उस वार्डन की फोटो भी लगी है।
ये तुम्हें कहाँ मिला?
जनाब, इस लड़के के लॉकर से।
विनोद।
सर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वार्डन का ये पर्स तुम्हारे लॉकर में क्या कर रहा है?
सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया।
हवलदार, ले चलो इसे।
पिंटो।
ए, चल।
पिंटो बोलना इसको, मैंने कुछ नहीं किया।
अब जो भी बोलना है थाने में बोलना, चल के थारी भी मुंह खुलवाऊं मैं, चल।
अच्छा प्रिंसिपल साहब, मैं चलता हूँ।
जी इंस्पेक्टर साहब।
ये क्या है, किसी कमीज की जेब का टुकड़ा लगता है, पर ये यहाँ, इसका भी कत्ल से कोई संबंध है?
समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ने हमें आज ही क्यों बुलाया है, आखिर इतनी जरूरी क्या बात हो सकती है। हाँ एक काम करती हूँ, डॉक्टर से फिर से बात करती हूँ।
हेलो
हेलो डॉक्टर, मैं शीला बोल रही हूँ।
हाँ शीला, तुम आज आ रही हो ना?
वो क्या है ना डॉक्टर, आज इन्हें बहुत जरूरी काम पड़ गया है, इसलिए आज तो आना मुमकिन नहीं हो पा रहा।
लेकिन शीला
डॉक्टर, अगर आप कहें तो मैं अपने किसी रिश्तेदार को भेज दूं। आप रिपोर्ट की ही बात करने वाली है ना, तो रिपोर्ट मेरा भांजा लेता आएगा।
नहीं शीला, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को ही आना पड़ेगा, और हाँ जितना जल्दी हो सके मुझसे आके मिल लो।
जी डॉक्टर, मैं इनसे बात करती हूँ। अच्छा नमस्ते।
नमस्ते।
आखिर ऐसी क्या बात है, मुझे इनसे बात करनी होगी।
बीबी जी, ओ बीबी जी, कूड़ा डाल दो जल्दी से।
आई। क्या बात है कटोरी, आज तो तू बहुत दिनों बाद दिखाई दी है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी?
अरे धनवंती बीबी जी, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन हाँ इस गांव के लड़कों की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है।
अरे क्या हो गया गांव के लड़कों को?
अरे वो मोहित।
क्या हुआ, क्या हुआ मोहित को?
कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये कह रही थी इस गांव के लड़कों का ध्यान पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ना है। सारा दिन जब देखो तब या तो गधेरे पे बैठकर गप्पे मारते रहेंगे या फिर इधर उधर की मस्ती करते रहेंगे। अब बीबी जी तुम ही बताओ, कल को ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इस गांव के ही काम आएंगे ना?
वो तो है कटोरी।
अच्छा बीबी जी, सूरज भाई जी कैसे हैं? शहर में सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना?
वो बिल्कुल ठीक है कटोरी, और उनका काम भी अच्छा चल रहा है।
अच्छा है। अच्छा बीबी जी चलती हूँ, और भी कई घर निपटाने हैं मुझे।
ठीक है कटोरी।
आ गई सुमन, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ।
मैं आऊँ या जाऊँ इससे तुम्हें क्या मतलब? और हाँ, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी फिक्र करो। आखिर अब मेरे लिए एक भाई या बहन जो लाने वाली हो, वो भी सौतेला।
सुमन, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सुमन,
नहीं कुछ नया नहीं किया तुमने, तुमने भी वही किया जो हर सौतेली माँ करती है। मुझे पता था एक ना एक दिन ये सब जरूर होना है।
सुमन मेरी बात।
बस अब कोई बात नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे।
सुमन सुमन सुमन।
चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे धारावाहिक जीवन की राह। प्रेमा, ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए डॉक्टर शीला को जल्दी मिलने के लिए कह रही है, और वो भी राजन के साथ?
अब भाई इसका पता तो आने वाले एपिसोड में ही चल पाएगा ना। अच्छा जगत, मुझे एक बात बताओ। तुम्हें क्या लगता है, क्या लड़कियों को, मेरा मतलब किशोरियों से है, क्या उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी होती है?
वैसे प्रेमा, एक महिला होने के नाते इस सवाल का जवाब तुम ज्यादा बेहतर दे सकती हो। हाँ मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि लड़कियों को यौन और प्रजनन शिक्षा के साथ साथ प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और लड़कियों को ही क्यों, लड़कों को भी प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहिए।
तो चलो जानते हैं हमारे श्रोता इस बारे में क्या कहते हैं, हमारे सेगमेंट क्या किया जाए में।
एक लड़की और एक लड़के के बीच जब रिलेशन बनते हैं यौन रूप से, तो वो गर्भवती हो सकती है।
एक लड़की तभी माँ बनती है जब वह एक लड़के और लड़की के बीच यौन रूप से मिलन हो। एक लड़की और एक लड़के के बीच जब शारीरिक रूप से मिलन होता है, तभी एक लड़की माँ बनती है।
जब एक लड़का लड़की शारीरिक रूप से यौन संबंध बनाते हैं और उन दोनों में कोई कमी नहीं होती है, तब एक लड़की माँ बन सकती है।
तो दोस्तों ये थे हमारे श्रोताओं के विचार, जिन्हें जानने की कोशिश की हमारे सामूहिक संवाददाताओं ने, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
और साथ ही दोस्तों हम धन्यवाद करते हैं अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का, जिनके वित्तीय सहयोग से कार्यक्रम नई दिशा आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
और दोस्तों हमारे क्विज में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें। आप चाहे तो एचआईवी से जुड़ा अपना कोई भी सवाल या आशंका हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए हमारा नंबर नोट करें,
9717678223, यानी 9717678223।
और दोस्तों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो मुझे और जगत को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।